તારીખ 21/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 8 મૂળ કેસેટમાં અવાજ બરાબર નથી.
શ્રીમદજી કે 23 સાલ કી આયુ કા એક પત્ર હૈ. 23 સાલ કી આયુ પ્રાય રાગવર્ધક આયુ હોતી હૈ. ઇસ ઉમ્ર મે રાગ કી તીવ્રતા બઢતી હૈ, અનેક પ્રકાર કી મહત્વાકાંક્ષા આશાએ બહોત તેજી સે ચલને લગતી હૈ. ઠીક ઇસી ઉમ્ર મે ઉનકો કિતના વૈરાગ્ય થા और कितना वैराग्य इस पत्र से उन्हें उपदेश किया है, ये एक बहुत अच्छा मुमुक्षु भूमिका का द्योतक है. श्रीमद जी की भी ये तीव्र मुमुक्षुता की भूमिका है, क्योंकि इसके बाद ही 2 महीने के बाद ही उनको सम्यक दर्शन की और स्वानुभव की प्राप्ति हुई थी. तो सम्यक्त्व समीप की भूमिका में से निकले हुए ये वैराग्य के उत्पादक वचन कैसे हैं, ये बहुत इस भूमिका के इस मुमुक्षों के लिए प्रयोजनभूत है. प्रारंभ में ही जो संवत्सरी का दिन गया है उसके लिए वो क्षमा अपना लेते हैं. प्रथम संवत्सरी से लेकर आज के दिन तक किसी भी प्रकार से आपकी अविनय असाधना असमाधि मेरे मन वचन काया के किसी भी योग अध्यवसाय से हुई हो उनके लिए पुनः पुनः क्षमा चाहता हूँ. मुमुक्षु के प्रति क्षमा याचना की है, विनम्रता कितनी है कि पूरा वर्ष के दरमियान कुछ अविनय हुआ हो, क्योंकि प्राय जो है उम्र में सब इनके वंश बड़े थे. जो भी मुमुक्षु इनके संग में आए थे वो उम्र में तो बड़े ही थे, बहुत छोटी उम्र के थे. तो कुछ अविनय हुआ हो, कोई असाधना हुई हो, या कुछ कठोर शब्द से कोई बात कही हो, ऐसे तो बहुत मृदु भाषी थे, मधुर भाषी थे, फिर भी और कोई असमाधि मैंने समाधान नहीं हुआ हो मेरी ओर से आपको, कुछ बात मानने में नहीं आई हो, आपको अखरती हो, ऐसी हो, मन से वचन से काया से इस तीन प्रकार का योग होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से, उसके अध्यवसाय से मैंने परिणाम से जो कुछ हुआ हो उनके लिए पुनः पुनः क्षमा चाहता हूँ. ये शुद्ध अंतकरण से क्षमा याचना का जो व्यवहार है हमारे यहाँ, ये अंतर के शल्य को मिटाने वाला है. किसी के प्रति कुछ भी कुछ हुआ हो और उसके कारण कुछ अंदर में रह गया हो वो निकल जाता है. अगर शुद्ध अंतकरण से क्षमा प्रार्थना करने में आती है तो, वरना एक रूढ़ी होती हो जाती है, रिवाज हो जाता है और भाव में कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, और क्षमा कर लेते हैं, संवत्सरी का दिन है चलो क्षमा कर लो, ऐसा नहीं। ये जो व्यवहार है ये परमार्थ हेतु से उसकी व्यवस्था हमारे जैन दर्शन में है। जैन दर्शन के अलावा कहीं ऐसा व्यवहार भी देखा नहीं जाता। हम तो पहले प्रभावित हुए थे इस व्यवहार से। हमारे साथ काम करने वाले एक श्वेतांबर जैन थे बंबई में, तो जब समस्वी का दिन आया तो उन्होंने हमारी क्षमा मांगी, तो हमको लगा कि ये कोई व्यवहार है, बहुत बढ़िया है, साल में एक दफे तो आदमी हल्का सा हो जाता है कि चलो मेरे ओर से कोई आपके प्रति कुछ है, मैंने अगर कुछ हुआ है उसकी मैं क्षमा मांग लेता हूँ। तो ये व्यवहार कहीं अन्य दर्शन में नहीं है, ऐसा एक परमार्थ हेतुभूत यह व्यवहार है। अब ये पत्र के विषय को प्रारंभ करते हैं। अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए, देखो क्या है अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए। ऊपर ऊपर से कोई विकल्प आया है वो बात नहीं है, कोई तर्क उठा है वो बात नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान हमारे अनंत काल के जीवन के भीतर व्यापक जैसे हो गया, व्याप्य व्यापक हो करके इस बात को स्मरण करता है कि अरे जीव क्या क्या हुआ है, भूतकाल में तूने क्या क्या किया, ऐसा अंतर्ज्ञान से स्मरण करते हुए। ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता कि जिस काल में जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, ऐसा कोई काल नहीं है। यह जीव परिभ्रमण करता ही रहा है, आज यहां है कल कहां जाएगा, कहां से आया है कहां चला जाएगा, उसका कोई स्थायी स्थान नहीं रहा। अनंत काल में परिभ्रमण करता हुआ इन जीव को कोई स्थायी स्थान नहीं मिला है। चाहता तो है, जिस देह को धारण करता है उसको छोड़ना नहीं चाहता, जिस मकान में जिस परिवार में जिस मोहल्ला में जिस नगर में वो रहता है जिस देश में रहता है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। आपको सरकार की ओर से गवर्नमेंट से मिल जाए कि आपको आगरा छोड़ देना है, बहुत तकलीफ वाली बात होगी। हमको गांव छोड़ना पड़ेगा क्या, पूरा गांव छोड़ना पड़ेगा, यहां कितने साल हम यहां रहे, और परिवार को छोड़ने की बात आए तो ये तो किसी कीमत पे बर्दाश्त होने वाली नहीं है। फिर देह त्याग के तो प्रसंग आने पहले ही इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि प्रायः मनुष्य आत्मा मूर्छा अवस्था में ही देह का देह त्याग करता है, इतना दुख हो जाता है। क्योंकि देह त्याग में तो सबको एक साथ छोड़ना पड़ता है, देह को, परिवार को, नगर को और देश को। तो परिभ्रमण करना ही पड़ता है, अगर हमें स्थायी रहना है तो भी हम रह सकते नहीं। और इसी कारण से हमने काफी मात्रा में बहुत अनंत अनंत दुख का भोग किया है, बहुत दुख भोगा है। क्योंकि हमारे इच्छा विरुद्ध ये परिस्थिति बन के ही रहती है। तो ऐसा कोई काल नहीं हुआ को परिभ्रमण जीव करता ही रहा है, परिभ्रमण करता ही रहा है। ये परिभ्रमण का ज्ञान वैराग्य का उत्पादक है क्या? इसलिए हमारे मुनिराज कोई क्षेत्र प्रतिबंध में नहीं आते। जो मुनिराज होते हैं वो कोई क्षेत्र में नहीं रहते, इस क्षेत्र में एक चातुर्मास को छोड़ करके, चातुर्मास एक जगह रहते हैं, इसके पहले कहीं भी वो एक क्षेत्र में निवास नहीं करते। ऐसा भी नहीं होता कि इस क्षेत्र के आसपास के लोग बहुत धर्म भावना वाले हैं इसलिए मुझे यहां रहना चाहिए, ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है। संसारियों का तो, संसार की रुचि वालों का तो प्रतिबंध उसको हो ही सकता ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल विरुद्ध परिणाम है अपने मार्ग से। लेकिन धर्म भावना वाले जहां मनुष्य ज्यादा हो वहां तो मुनि को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कहीं भी क्षेत्र से, द्रव्य से, काल से, भाव से मुनिराज ए प्रतिबंध बिहारी होते हैं। क्यों ऐसे हुए हो, ऐसा चरित्र उसका क्यों हुआ कि मुमुक्षु की भूमिका में उसको वैराग्य आया था जो इधर आया है कि अरे रे इस जीव ने कितना परिभ्रमण किया, इतना परिभ्रमण करके भी उसको थकान क्यों नहीं आई, और भी परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम को सेवन करता है क्यों? ये वैराग्य का कारण है। वो वैराग्य मुनि दशा में चरितार्थ हो जाता है बिल्कुल। ऐसा कोई काल याद नहीं आता कि जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प के रटन न की हो, भाव भ्रमण किया है और भाव भ्रमण के फल स्वरूप द्रव्य भ्रमण भी किया, संकल्प विकल्प में भाव मरण किया और इसके फल स्वरूप द्रव्य मरण भी किया। तो ये संकल्प विकल्प है वो भाव भ्रमण है, कभी उपयोग उधर भटकता है कभी इधर भटकता है कभी इधर भटकता है, ये भाव भ्रमण के फल स्वरूप द्रव्य भ्रमण भी करना पड़ता है। ऐसे हम तो स्थायी तो रहना चाहते हैं, एक जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, परंतु भाव के भ्रमण तो करते ही रहते हैं, भाव से तो हमारा भ्रमण चालू रहता है। तो भाव भ्रमण के कारण से द्रव्य भ्रमण भी हो जाएगा। और इससे समाधि को न भूला हो और अपना जो निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप आत्म समाधि है ये संकल्प विकल्प के कारण से चुप गया है, इतना अशांति में परिणमन कर रहा है कि कहीं उसको शांति नहीं मिलती। कुछ आकुलता के कारण रूप प्रतिकूलताएं होती हैं, इस प्रतिकूलताएं नहीं होने पर भी शांति नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि जिसको कोई प्रकार की प्रतिकूलता न हो, कोई कुटुंब की प्रतिकूलता नहीं हो, कोई पैसे की प्रतिकूलता नहीं हो, कोई व्यापार की प्रतिकूलता नहीं हो, किसी भी प्रकार के नहीं हो, सब अनुकूलता होने पर भी वो कहते हैं कि कहीं भी हमें शांति नहीं है, चैन नहीं है, ऐसा क्यों होता है हमें? इसलिए ऐसा होता है कि शांति का, अनंत शांति का पिंड जो हमारे स्वरूप है, उसका आधार अवलंबन नहीं लेकर के, जिसमें शांति की एक बूंद भी नहीं है, ऐसे अनुकूलता का आधार ले लिया। पहले अनुकूलताएं जुटाने के लिए दौड़ धाम किया, फिर अनुकूलता पूर्व पुण्य के योग से हुई, दौड़ धाम के कारण से नहीं हुई है, पूर्व पुण्य के योग से हुई, प्रारब्ध योग से हुई, तो भी आधार इसका ही रहा कि ये सब ठीक तो है, ये सब अनुकूल तो है, कोई चिंता तो किसी की नहीं है, यही आधार बुद्धि एक अशांति का कारण बन जाती है, जो उसके खुद को समझ में नहीं आती है। अपने देवलाली में रमेश भाई थे ना, उसकी ऐसी परिस्थिति है, करोड़ों के करोड़ों रुपये हैं, कुटुंब में सर्व प्रकार की अनुकूलता है पूरी, व्यवसाय आदि में कोई काम करना नहीं पड़ता है, लेकिन शांति नहीं है, क्या करें? इसलिए वो आए थे, शांति नहीं है क्या करें? तो हमारा जो आत्मधर्म है, ये कोई रूढ़ी धर्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, कोई संप्रदाय की परंपरा वाली चीज नहीं है, ये एक आत्म शांति पैदा करने का एक उपाय है, एक मार्ग है। और ये आत्म वस्तु का स्वभाव होने से, वत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव रूप धर्म उसको बोलने में आता है। कहते हैं कि जीव समाधि को भूल गया, ऐ समाधि दशा में कहीं उसको समाधान नहीं होता है, अनुकूलता होने पर भी समाधान नहीं होता है, तो प्रतिकूलता में तो समाधान आएगा ही, कहां से आएगा? उसमें तो अशांति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अनुकूलता में अनुकूलता का रस चढ़ जाता है अज्ञान दशा में, और प्रतिकूलता में प्रतिकूलता को हटाने के लिए जो द्वेष आता है उसका रस चढ़ जाता है। एक राग रस है, एक द्वेष रस है, दोनों मोह के पुत्र है, और दोनों में अशांति है, राग में भी अशांति है, द्वेष में भी अशांति ही अशांति है। तो समाधि में, आत्म समाधि में जो शांति है, वो शांति कहीं भी नहीं है। तो हमारे आत्मा में ने ऐसा कोई काल नहीं बिता कि ऐसे आत्म शांति हमें मिली नहीं, अशांति ही रही है हमेशा हमेशा, और सुख शांति के लिए हम भटकते रहे। कहां भटके? के जहां सुख शांति नहीं है वहां भटके। निरंतर यह स्मरण रहा करता है। देखो 23 साल की उम्र में कि लिखते हैं कि निरंतर हमें यही स्मरण रहा करता है कि अरे जी कहां तक ये परिभ्रमण तू करेगा, ये द्रव्य भाव परिभ्रमण है तो कहां तक तू करेगा, ऐसा निरंतर स्मरण में रहता है। और यह महावैराग्य को देता है, इस स्मरण हमें हर जगह से विरक्तता को प्राप्त कराता है, कहीं रस नहीं आता हमें। जो भी प्रारब्ध कर्म से कारण से उदय है हमारे, उस उदय में हमारा चित्त कहीं नहीं लगता है, परिणाम निरस हो जाते हैं। अज्ञान दशा में पहले रस आता था, यही स्मरण से ये रस निरस हो गया है हमारा, महावैराग्य आया है। 23 साल की उम्र में उतना वैराग्य हुआ है। ये मुमुक्षु को अपनी भूमिका को मिलान करने जैसी चीज है। और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई, ये परिभ्रमण क्यों किया, कि स्वच्छंद के कारण से किया। चाहिए थे हमें सुख शांति, सुख शांति चाहते हुए भी सुख शांति का इलाज हमने स्वच्छंद पूर्वक किया। जिनको सिर्फ सुख शांति मिली है, ऐसे जो धर्मात्मा है, उनका मार्ग को अनुसरण नहीं किया, अपनी मनमानी किया। कल बात चली थी ना, संसार में तो हर जीव अपनी मनमानी करना चाहता ही है, और इसी से ये लड़ाई झगड़ा टकरार सब होता है, संघर्ष होता है, ये बड़ी बड़ी लड़ाई और विग्रह होता है। यही कारण है कि हमारी मनमानी होनी चाहिए। घर में हो या संसार के कोई क्षेत्र में हो, यही कारण है। धर्म के क्षेत्र में भी ये मनमानी ही संघर्ष का कारण है। देखिए, सारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, सैकड़ों प्रकार के धर्म हैं, एक देश में सैकड़ों प्रकार का है हमारे यहाँ, उसमें सर्वोत्कृष्ट कोई धर्म है तो ये तीर्थंकरों का उपदिष्ट किया हुआ जैन धर्म है। और आज सबसे अधिक झगड़ा भी इसी में है। क्या कारण है? कि हमारी मनमानी नहीं होती, यही कारण से है। हम चाहे ऐसा होना चाहिए, इसी कारण से सर्वोत्कृष्ट तत्व का प्रदान करने वाला ये धर्म है, सर्वोत्कृष्ट शांति को देने वाला ये धर्म है। उसी में ही हर स्तर पर, अनेक स्तर पर और प्रत्येक स्तर पे तकरार ही तकरार, झगड़ा ही झगड़ा। आपके यहां जो भी जाति है, खंडेलवाल, फलाने फलाने, जो भी, सब में देखो। और हमारे संप्रदाय में, हमारे जो सोनगढ़ के अनुसरण करने वाले हैं, उसमें क्या हुआ? हर स्तर पे ये हो गया, हर मंडल में ये हो गया, गांव गांव में ये हो गया। क्यों? हमारी मनमानी होनी चाहिए, उसी को ज्ञानी स्वच्छंद कहते हैं, उसी को ही ज्ञानी स्वच्छंद कहते हैं। तो कहते हैं कि केवल स्वच्छंद से हमने परिभ्रमण किया, ऐसे स्वच्छंद से करते हुए इस स्वच्छंद के प्रति उदासीनता हमें क्यों न आई। हमारे आत्मा का नुकसान करने में भी हमें उदासीनता नहीं आई, अपने से प्रश्न किया, वैराग आया है ना, कि हुआ सो हुआ, आइंदा हमें ऐसा करना नहीं है। यही बात है उसमें।
कितना
हाँ, कि अरे इस जीव ने कितना स्वच्छंद कर लिया अभी तक, अब स्वच्छंद से नहीं चलना है, अब हम हमारे तर्क वितर्क करके धर्म नहीं करेंगे, अब हम जिसने धर्म पाया है उसी का ही अनुसरण करेंगे, हमारी मनमानी नहीं करेंगे। तो कल चली थी बात, धन बल, वचन बल, तन बल और क्षोभ का बल, जिसको जो तगड़ा होता है बस अपनी मनमानी उसी क्षेत्र में करने लग जाता है। शरीर अच्छा रहा तो क्रियाकांड करो, धन बल हुए तो दयादान करो, वचन बल हुए तो भाषणबाजी करो और क्षोभ हुए तो चर्चा करो, शास्त्र पढ़ो और क्षोभ बढ़ाते जाओ। इस प्रकार से चलना चाहिए है नहीं है? क्या मद हो गया है? इसका मद होता है, हम समझते हैं क्षोभ आता है तो क्या हम भी समझते हैं, हम भी समझते हैं तो ज्ञानी की आज्ञा मानेगा नहीं। ये ज्ञानी की आज्ञा में नहीं रहना उसका नाम ही स्वच्छंद है। क्या ज्ञानी की आज्ञा कहो, गुरु की आज्ञा कहो या जिनेन्द्र आज्ञा कहो, तीनों एक बात है। तो आज्ञा में नहीं रहना यही स्वच्छंद है। फिर हम चाहे वैसा करने लग जाते हैं, ऐसे करते हुए हमारे जीव को उदासीनता क्यों ना आई, क्यों उदासीनता में हम नहीं आए? तो अपने को धिक्कार आता है अपने पर कि ऐसा क्यों हमें हुआ था। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा कुछ करते हुए, कुछ भी करते हुए, अन्यथा मैंने उसको दुख पहुंचे ऐसा कुछ करते हुए, यह बुरा है ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना, यह बुरा है ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना, ये अनिष्ट परिणाम है, एक कर्तव्य है, ऐसा हमने क्यों नहीं जाना जी? उसको बताने वाले तो बहुत मिले, लेकिन स्वच्छंद के कारण से माना नहीं। क्या ऐसा कोई काल नहीं है कि जिसमें धर्मात्माओं की उपस्थिति न हो, ऐसा कोई काल नहीं। हाँ कुछ क्षेत्र में न हो कुछ काल के लिए ऐसा बन सकता है, लेकिन मनुष्य के किसी भी क्षेत्र में पूरा इसका अभाव हो ऐसा कोई काल नहीं है, होते ही है और अनंत बार मिले हैं, लेकिन हमने मानी ही नहीं, हमने नहीं मानी ये बात।
किस कारण से नहीं मानी?
स्वच्छंद के कारण से, अहम हो गया, हम भी जानते हैं आप कहते हैं लेकिन हमको ऐसा लगता है। क्या ऐसी बात है? ऐसा है कि जीव की विपरीतता भी बड़ी है, ऊंधाई भी बड़ी है। तीर्थंकर के सामने उसका बोध प्राप्त होने पर भी प्रत्यक्ष साक्षात के नहीं माना, हम नहीं मानेंगे, हमको नहीं बैठती है बात, हमको नहीं बैठती है बस, ठीक ऐसा हुआ है। जबकि समोसरण में डूबने की कोई जगह ही नहीं है, वहां तो तिरने की ही जगह है, फिर भी वहां भी हम डूबे, वहां जाकर के भी डूबे तो कितनी ऊंधाई की होगी है? ऐसे भयंकर परिणाम किया है। तो ऐसे करते हुए हमने यथायोग्य हमारी समझ क्यों नहीं रही? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से हमने ऐसा किया। काल लब्धि का ज्ञान हो जाता तो तिर जाता लेकिन उसका भी ठिकाना नहीं है वास्तव में। तो हमारे हित की बात हम नहीं मानते हैं। कैसी एक विचित्रता है योग्यता की कि हमारे हित की बात भी हम सुनना नहीं चाहते, मानने को स्वीकार नहीं करते। क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि नहीं आता है? ये जो तीर्थंकरों का मार्ग है उसमें एक भी पहलू तो ऐसा बता दो कि जिसमें कोई अनुचितता हो, अयोग्य बात हो, कोई दूषित, इसके कोई परखे में कोई अंश में कोई दोष हो, ऐसा तो बता। भगवान परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं भगवान आत्मा है ना, तो भगवान को सर्वगुण परिपूर्ण सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं। तथापि इनमें भी कुछ कम उपलक्षण नहीं है। विचित्र करना यही है इसकी लीला। क्या? विचित्र करना यही है इसकी लीला। तो अभी क्या कहना, हम सब करके आए, विचित्र ही किया है आज तक। देखिए, हमको कोई कहेंगे कि आप अभी बूढ़े हो गए हैं। कैसे बूढ़े हैं? बूढ़े हो गए हैं, कुछ काम के तो लायक नहीं रहे। अब क्या है कि कुछ दिन में जाना भी है, तो अब ममत्व तो क्यों नहीं छोड़ते अपने परिवार का? अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो ममत्व करते हैं कि घर अच्छा है? कोई ममत्व कर लेते क्या? मेहमान किसी के घर पे रहते हैं तो कोई ममत्व करते हैं इस घर से, इस परिवार से कुछ करते हैं क्या? तो दिन तो रहे मेहमान के, फिर हम क्यों ममत्व करते हैं? जिसने 40-50 साल बिता दी, उसने अपने आयु का बहुभाग जो है वो भोग लिया। जितना भोगा है शायद उतना नहीं है। अब जो भी है वो अनिश्चित है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो रह गए मेहमान। यद्यपि किसी भी उम्र में देह तो छोड़ता है, माँ के पेट में भी छूट जाता है आते ही, जन्म होने पहले ही मर जाता है कोई बच्चा, कोई जन्मते ही मरता है, कुछ दिनों में, कुछ माह में, कोई वर्ष में, कहीं भी मरता है। लेकिन जिसको 40-50 साल मनुष्य आयु भोग लिया, उनको तो ऊपर सीलिंग है, आगे जा सकता नहीं है, कुछ उम्र से आगे तो जा ही नहीं सकता। तो ये तो मेहमान ही रह गए। अब तो जो भी है बोनस लाइफ है, मुफ्त में मिली है। अब इसका भी सदुपयोग नहीं करना है या इसका भी दुरुपयोग करना है तो फिर भटकना नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो क्या होगा कि दुखी दुखी हो जाएंगे। इसलिए सर्व प्रकार के प्रतिबंध से हट करके, न समाज प्रतिबंध चाहिए कि समाज क्या कहेगा, न कुटुंब प्रतिबंध चाहिए कि घर वाले क्या सोचेंगे, और न देह प्रतिबंध चाहिए कि हमारा शरीर का क्या हो जाएगा, बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा। अरे वो कुछ होगा, वो तो हमारे में कुछ होने वाला नहीं है। ये समाज कुटुंब प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, परिवार के प्रतिबंध और देह प्रतिबंध और संकल्प विकल्प का प्रतिबंध एक और होता है। ये चार प्रतिबंध जिसको छूटते हैं वही जीव आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो सकता है। जिसको प्रतिबंध है वो आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। देख लेना हमें क्या क्या है। तो ज्ञानी को बनना है कि नहीं बनना है, हमें अज्ञानी रहना है क्या? जिसको ज्ञानी हो ना हो तो ज्ञानी तो अप्रतिबंध बिहारी होते हैं। उस चरण में तो लिया कि न लिया, ज्ञानी का विशेषण ये लिया। कल रात को जो स्वाध्याय किया उसमें क्या बात चली? जो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से बिछड़ते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना, सम्यक प्रतीति आए बिना अपना निज स्वरूप की प्राप्ति किसी को नहीं होती। ये पहला चरण है सत्स्वरूप की प्राप्ति के लिए, ये पहला कदम है। इसके बिना किसी को हुई न है न होने वाली भी है। अर्थात ऐसा जानना चाहिए था हमें कि हमने ये विपरीत परिणाम क्यों किए, ऐसा जानने चाहिए था फिर भी न जाना। यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। हमारी भूल हमारी समझ में आई तो ऐसी भूल हम फिर से नहीं करें, ऐसा एक हमको विरक्तपना आता है भूल करने के परिणाम के प्रति। विरक्तपना मैंने रस छूट जाना, हमारा आत्मकल्याण के कार्य में ही हमारा रस है और कहीं जगह हमें रस नहीं आता है। और स्मरण होता है, ये अंतर्ज्ञान में स्मरण हो रहा है क्या? ऊपर ऊपर से स्मरण नहीं आता है। और स्मरण आता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, ऐसे कितने ही पदार्थ प्रति ऐसे भाव हुआ, एक पल भी मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बिना, ऐसे कितने ही पदार्थ स्त्री आदि, उनको अनंत बार छोड़ा, एक बार नहीं छोड़ा किंतु अनंत बार छोड़ा, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, एक क्षण भी रहना मुश्किल था इसको छोड़ते हुए अनंत काल हो गया, फिर भी मैं जिंदा रहा, मरा नहीं, तथापि उनके बिना जीवित रह गया। यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। हमारे परिणाम में ऐसा बन गया तो कुछ कम आश्चर्यकारक परिणाम नहीं है। एक समय ऐसा था कि इसके बिना जीना जिंदा रहना मेरे लिए कोई संभव नहीं है, रह नहीं सकता मैं जिंदा, उनको छोड़ते हुए अनंत काल हुआ और जीवित रहना हुआ, कितना आश्चर्यकारक बात है। अर्थात जिस जिस समय वैसा प्रतिभाव किया था, ऐसा तीव्र राग किया था, तीव्र स्नेह किया था, तीव्र प्रेम किया था, उस समय वह सब कल्पित था, मात्र कल्पना थे, वो कल्पना छूट गई। क्या हुआ? किसी भी अन्य पदार्थ के प्रति तीव्र में तीव्र अनुराग हुआ है जीव को, और ये कल्पना युक्त है, कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी कल्पना है, उसमें कुछ दम नहीं है। तो ऐसा कल्पित भाव हमें क्यों हुआ? किस कारण से हम दुखी हो गए, परिभ्रमण में चले गए, जन्म मरण करते रहे, भटकते रहे? यह भी स्मरण, ऐसा हमारे परिणाम का स्मरण पुनः पुनः वैराग्य को देता है और वैराग्य आता है। ऐसा स्मरण में आते ही बहुत वैराग्य होता है। ऐसा कल्पना में हम बहुत दुखी हुए, ऐसी ऐसी कल्पना में हम बहुत दुखी हुए। और जिसका मुख किसी काल में न देखूं, अगर द्वेष कैसा हुआ, पहले राग की बात लिया, द्वेष भी ऐसा ही किया है हमने, कि जिसका मुख किसी काल में भी मैं न देखूं, मुंह देखना नहीं चाहता, सामने देखना नहीं चाहता, ऐसा द्वेष आ जाए। जिसे किसी काल में ग्रहण ही न करूं, दुर्गंधा के परमाणु होते हैं, बहुत घृणास्पद परमाणु होते हैं, देखना भी नहीं चाहे, ऐसी गंदगी होती है, और वही मनुष्य हो जाता है, वैर वृत्ति होती है, तीव्र वैर वृत्ति होती है, मारने के परिणाम हो जाते हैं। उसके घर ही पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, नाना जंतु के रूप में इसके घर में पैदा हुआ, चीटी हुई, चिपकली हुई, हाँ, कई प्रकार के इसके घर में ही उंदर हुए, चूहा कहते ना अपनो, चूहा चूहा कहते ना, चूहा हुआ है, इसी घर में चूहा हो जाता है। क्या इतना ममत्व रहता है परिवार का और घर का, कि मर करके वहीं चूहा हो जाता है, घूमता ही रहता है, इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे, पर लड़ाई झगड़ा उतना किया हो, इतना तीव्र वैमन से क्या उसी के घर में चूहा हो जाए, प्रीति के कारण से या द्वेष के कारण से। मैं क्यों जन्मा? जिसका मुंह भी देखना नहीं चाहता था, इसके घर में ऐसा होकर के क्यों जन्मा? अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में मुझे जन्म लेना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी उसके नौकर चाकर के रूप में जन्म लेना पड़ा, उसके स्त्री पुत्रादि के रूप में जन्म लेना पड़ा, इसके घर में जीव जंतु होकर के भी रहना पड़ा, जिसके साथ एक समय नहीं रहना था उसके साथ पूरा जीवन गुजारना पड़ा, और वैसा करने की तो इच्छा भी नहीं थी बिल्कुल। कहिए, यह स्मरण होने पर इस क्लेशित आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी? हमारे आत्मा पर हमें धिक्कार नहीं आया क्या, नहीं आएगा क्या? ये क्या विचित्रता है, कैसी विचित्रता है? अर्थात ऐसा स्मरण आते ही, हमारी स्थिति का ऐसा स्मरण आते ही हमें घृणा आती है, हमारे हमारी स्थिति की हमें घृणा आती है, ये क्या है, कैसी विचित्रता है जगत, अधिक क्या कहना। जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना, यह चिंतना हो पड़ी है। क्या हुआ है कि ये पूर्व के भवांतर में हमने कैसे कैसे भ्रांति युक्त परिणमन किया, हमारे भ्रांति भाव के कारण से हमने 84 लाख योनि में परिभ्रमण उत्पन्न होकर के परिभ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब इस परिभ्रमण छोड़ने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए हमें, इसकी बड़ी चिंता हमें पैदा हो गई है। और ये चिंता हमें कहीं रस लेने देती नहीं है, हम विरक्त हो गए हैं, कहीं भी रस नहीं आता, ये परिभ्रमण के परिणाम है। फिर जन्म लेना ही नहीं, क्या चिंता में क्या आता है कि अभी जन्म मरण करना ही नहीं, अब छूट जाना है, किसी कीमत पर छूट जाना है। फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। ये सब हमारे स्मरण के जो परिणाम है, स्मरण से उतना वैराग्य उत्पन्न हुआ है, इतनी विरक्तता आ जाती है कि अभी फिर से जन्म मरण नहीं करना, ऐसा दृढ़ भाव प्रकट हो जाता है। परंतु कितनी ही निरुपायता है, वहां क्या करना, ऐसा हम चाहते हैं कि यहां से ही मोक्ष में चले जाए, लेकिन कुछ पूर्व प्रारब्ध के कारण कुछ कर्ज किया है, उस कर्ज को चुकाने के लिए रुकना पड़ता है, इसका क्या करें, क्या करना, इसका क्या करना। जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, जो हमारी दृढ़ता है उसे तो हमें पूर्ण करना ही है, जैसे कैसे भी हमें पूर्ण करना है, अवश्य पूर्ण करना ही यही रटन है। परंतु जो कुछ आड़े आता है उसे एक और करना, एक तरफ हटाना पड़ता है। क्या होता है कि हम हमारे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं प्रकार के मार्ग में ट्रैफिक सामने मिलते हैं तो हमारे स्पीड को कम करनी पड़ती है, या हमें कभी पीछे भी हटना पड़ता है, कभी साइड में भी हटना पड़ता है, तो उसमें हमारा समय थोड़ा खर्च हो जाता है, अर्थात खिसकना पड़ता है हमें। आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी कभी खिसकना पड़ता है और उसमें क्या काल व्यतीत हो जाता है, हमारे गतिरोध होता है, कहीं कहीं तो रोड पे भी गतिरोधक परिस्थिति खड़ी हो जाती है, इसलिए हमारी गति का रोध होता है और काल ज्यादा निकल जाता है, काल व्यतीत हो जाता है, आयु का जीवन चला जाता है, काल व्यतीत हो जाता है माने हमारा महंगा जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना, उसे न जाने देना जब तक यथा योग्य हमारी विजय न हो जाए, तब तक ऐसी दृढ़ता है कि हम हमारे समय को बर्बाद कहीं भी करेंगे नहीं, एक पल का भी, एक क्षण का भी उपयोग से, सावधानी से हम प्रयोग करेंगे, ऐसी दृढ़ता है, उसका क्या करना, इस दृढ़ता का भी क्या करना, दृढ़ता से भी क्या करना। कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करें, इस दृढ़ता के कारण सभी प्रतिबंध को हटा करके हम निकल जाएं कहीं, तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहां जाकर रहे, ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां हमारी आराधना निर्विघ्न रूप से चला कर चलती रहे, ऐसा स्थान कहाँ है कि ऐसा स्थान नजर दौड़ाने पर भी हमको देखने में नहीं आता। इस काल में सत्संग मिलना मुश्किल है, कहाँ ऐसा स्थान कहाँ है कि जहां जाकर रहे। अर्थात वैसे संत कहाँ है, किस जगह पे है कि जहां जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें, हमारे आत्मकल्याण की दशा का पोषण मिले। ऐसे संत कहाँ है कि जिसके चरण में हम निवास कर लें और हमारे आत्मकल्याण के मार्ग को पुष्टि मिलती ही रहे, पोषण मिलता ही रहे। ऐसा कहीं स्थान, ऐसा कोई संत हमें नजर नहीं आया, तो फिर क्या करना। एक चिंता खड़ी हुई है, 23 साल की उम्र में एक चिंता खड़ी हुई है। देखो क्या उस वक्त जैन संप्रदाय में साधुओं आचार्य नहीं थे क्या? जब उनको ऐसा विचार आया तो उस वक्त कोई अपने संप्रदाय में या दूसरे संप्रदाय में कोई संत गुरु आचार्य नहीं थे क्या? नहीं थे, इसलिए वो किसी के पास नहीं गए। जो थे वे सही नहीं थे, इसलिए वे नहीं गए। ऐसी बात है, थे तो सही लेकिन ऐसे होने चाहिए कि जिसके चरण में बैठकर आत्मकल्याण हो जाए, ऐसे नहीं थे। तो फिर अब क्या करना, क्या करना, क्या चाहे जो हो कुछ भी हो जाए, चाहे जितना दुख सहो, चाहे जितना परिश्रम सहन करते रहो, प्रतिकूलता आती रहो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, किसी के दी हुई प्रतिकूलता को उपसर्ग कहते हैं और नैसर्गिक प्रतिकूलता को परिश्रम कहते हैं। चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, रोग आ जाए शरीर के व्याधि, चाहे जितनी उपाधियां आ पड़ो, चाहे जितनी आधियां आ पड़ो, आदि व्याधि उपाधि, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र रह जाए। कितना? एक सेकंड नहीं, एक समय भले ही हमारा आयु बाकी हो और दुर्निमित्त हो, अनुकूल निमित्त कुछ नहीं हो, धर्म के अनुकूल के निमित्त नहीं भले हो, परंतु हमें ऐसा आत्मकल्याण करना ही है, किसी भी कीमत पे करना ही है। बस इतना निर्धार जिसको हुआ उसको मार्ग सरल है, सुगम है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति हो सकती है। यहां तक नहीं आया वहां तक विटंबना है सब प्रकार के, लेकिन इतनी तैयारी जिसकी हो गई कि किसी भी कीमत पे हम हमारे मार्ग से विचलित नहीं होकर के आगे बढ़ते रहेंगे, तो उनके लिए मार्ग सरल है, सुगम है और सर्वत्र कहीं भी हो उनको मार्ग प्राप्ति हो सकती है। ये पूर्णता का लक्ष्य है, इसी को पूर्णता का लक्ष्य कहते हैं। ठीक, दो ढाई महीना रहा है ना, समझ में आ जाता है, उसको बात तो समझ में आ जाती है। यही पूर्णता का लक्ष्य है जो गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। तो पूर्णता का लक्ष्य में कैसे भाव आते हैं? ऐसे भाव आते हैं तो उसकी शुरुआत हो गई, वो मार्ग में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके लक्ष्य में सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष पर्यंत की सभी पर्यायें गर्भ में आ चुकी, तब बाद में इसका प्रसव होगा, लेकिन गर्भ तो उसको हो गया। ये पूर्णता का लक्ष्य इतना बलवान होता है। देखो ये वितराग मार्ग की सुंदरता कितनी है, सुविधा कितनी है, कि जिसके प्रथम चरण में ऐसा गर्भाधारण होता है, मोक्ष पर्यंत के सभी पर्याय आ जाते हैं उसमें। आगे है पूरा संसार का त्याग है, इस तैयारी में पूरा संसार का त्याग है। पूरी से गर्भित शुद्धता क्या पात्रता तो प्रकट होगी। ये जो विशुद्धि है, पात्रता की विशुद्धि तो प्रकट होगी, उसी वक्त प्रकट होगी, बाद में होने वाले नहीं है, क्योंकि उसको कोई पूर्व शर्त नहीं है। ऐसे परिणाम करने वाले को कोई पूर्व शर्त वाले ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पहले तो सिद्धांत प्रवेशिका सीख लेनी चाहिए, वो बाद में नहीं है। कुछ जरूरत नहीं है उसको, न पढ़ने की, न सुनने की, न कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तैयारी हो जाए उसके पेट में सम्यक दर्शन के लेकर के मोक्ष पर्यंत की सभी पर्याय का आनंद हो गया है, वो प्रकट होगी, अपने अपने काल में प्रकट होगी। और ऐसे हुए बिना तब तक हे जीव तेरा छुटकारा नहीं है। क्या लिखा है देखो, आज कर कल कर, उसी दूसरे भाव में कर, लाख करोड़ भाव के बाद कर, ये इसके बिना छुटकारा नहीं है, तो नहीं है। क्या लिखा है, 30 साल की उम्र में उद्गार निकले हैं कहीं। इस प्रकार अंतर में से उत्तर मिलता है कि हे जीव तेरा छुटकारा इसके बिना नहीं है, और वो यथा योग्य लगता है। ये अंतर में से जो आवाज आई ये हमको सही लगती है, ये बात सही है। अगर हमें छुटना है तो ऐसे ही छुट पाएंगे, इसके बिना मार्ग की शुरुआत होने वाली नहीं है। आया था इसलिए बोला कि ये प्रश्न उठा और अंतर में से आया कि इसके बिना निस्तार नहीं है, और ये हमको सही लगा है, इसलिए हम उस मार्ग में आ गए हैं, हमारी शुरुआत हो गई है। अभी हमें इस मार्ग की प्राप्ति बहुत नजदीक में, समीप में हो जाएगी, और हुई भी है, 2-3 महीने के बाद में ये हो गई है। ऐसे मार्ग की प्राप्ति होती है, यही जिन मार्ग है, यही निज मार्ग है। जहां तक रखा।